हरे कृष्ण। सो कल हम लोग 13वें अध्याय से प्रकृति और पुरुष नहीं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अभी 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान ज्ञान क्या है करते हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तीसरे श्लोक में जो ज्ञान शब्द उपयोग किया गया है और यहाँ पर जो ज्ञान है इस ज्ञान जो भगवान वर्णन करने वाले हैं वो अलग है। या जब पहले श्लोक में अर्जुन ज्ञान बोलते हैं वो और तीसरे श्लोक में जो ज्ञान का भगवान ने वर्णन किया वो अलग है। और वो पहले श्लोक का और अभी 8वें श्लोक से 13वें श्लोक में जो ज्ञान का वर्णन करने वाला है वो दोनों एक ही है। यहाँ पर 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक ज्ञान की प्रक्रिया को बारे में वर्णन कर रहे हैं या प्रक्रिया बोलते हैं श्लोक का प्रोसेस ऑफ नॉलेज। और वो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिसको तीसरे अध्याय में ये मार्ग है ये अर्थ होता है इसका। और दूसरे शब्दों में ज्ञान के लक्षण भी हम लोग कहते हैं इसको। ये ज्ञान के लक्षण है या ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है प्रक्रिया है इसको यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो श्लोक क्रमांक 8 अमाणित्वं मदंबित्वं अहिंसा क्षांतिरार्जवं आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्माभिनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरन विश्वंगः पुत्र धारा ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्द योगेन भक्तिरव्य विचारिणी विविध देश सेवित्वं नरतेर्जन संसदि आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानात् दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तं यज्ञानं निरतोल्यता विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रतृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो यहाँ पर भगवान ज्ञान के लक्षण 20 लक्षण भगवान बता रहे हैं या प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया बता रहे हैं। तो अंत में वो कह रहे हैं ये सब ज्ञान है इसको छोड़कर और सब अज्ञान है। तो हम लोग इसको प्रक्रिया मानेंगे तो शिक्षण का क्या उद्देश्य है? शिक्षण क्या होता है? वो एक ज्ञान प्राप्त करने का प्रक्रिया होता है। और विश्वविद्यालय किस लिए जाते हैं हम लोग? ताकि हम लोग ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन भगवान यहाँ पर असली जो रियल प्रोसेस ऑफ नॉलेज का ऊपर कहते हैं, असली ज्ञान की प्रक्रिया जो है इसका वर्णन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में असली शिक्षण प्रणाली का वर्णन कर रहे हैं। तो ये सब ज्ञान का प्रक्रिया है या शिक्षण है, इसको छोड़कर अन्य क्या है? सब अज्ञान है। तो दूसरे शब्दों में जो विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है वो सब अज्ञान है। या वो जो शिक्षण प्रणाली है वो असली ज्ञान का प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये सब चीज तो वहां पर मिलते नहीं है ना। अमाने तो मदन भी तो पहले वो एक डिग्री प्राप्त कर लिया तो बहुत है, वो लोग अमाने तो अदम भी तो कुछ भी नहीं रहता है ना, ह्यूमिलिटी और प्राइडलेसनेस। आज सुबह हम कोई दिखा रहे थे, हम गुरुदास प्रो दिखा रहे थे किसी के लंबे लिस्ट कितने सारे डिग्री है करके तो सुबह सुबह तो वो अमाणिक तो अदम्भित का लक्षण नहीं है। और ये ठीक है, बहुत लंबा लंबा लिखते जाना ठीक है, उसको कौन बात। लेकिन वैसे ज्ञान से क्या हो जाता है, या ज्ञान की प्रक्रिया से लोग इतना गर्वित हो जाते हैं, गीता भागवत जैसे ग्रंथों का भी निंदा करते हैं या उनको उपहास करते हैं। तो वो सबसे तो इसलिए प्रॉपर कहा करते थे, ये जो शिक्षण है इट इज जस्ट लाइक अ डायमंड ऑन द सर्पेंट हुड। तो सांप के जो है ना सर के ऊपर एक मणि के समान है, तो बहुत डिग्री डाल देते हैं, वो मणि है वो मणि, लेकिन सांप को इतना विषैली एंडियस भगवान के प्रति या आचार्यों के प्रति वेद शास्त्रों के प्रति इतना ईर्ष्यालु द्वेषी हो जाते हैं। तो सांप क्या है? बहुत ही ईर्ष्यालु है, बहुत ही द्वेषी जीव है। तो ये आधुनिक शिक्षण प्रणाली तो सब अज्ञान है। और प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे थे तात्पर्य के आरंभ में कि कोई कोई ऐसे सोचते हैं कि ये जो है वो क्षेत्र का कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान के इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र के अंतक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं। तो ये थोड़ा हमें समस्या लग रहा है। तो इंट्रैक्शन ऑफ प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इंट्रैक्शन ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ऐसे कहते हैं। तो लेकिन ये क्षेत्र से ऐसे संबंधित है, इस ज्ञान की प्रक्रिया को स्वीकार करने से वो एक व्यक्ति जीवात्मा जो क्षेत्र में अभी बंध गया है तो वो मुक्त हो जाता है। क्षेत्र के जो आवरण है, ये शरीर या क्षेत्र जो है 24 तत्वों से बना है, तो जीवात्मा इन 24 तत्वों के जो आवरण है उसमें बंध गया है ना। कितना प्रबल हुआ होगा ना, आपको एक ऐसे थैली में अंदर डाल दिया गया और वो थैली को ऐसे और 24 थैली में डाल दिया, तो क्या हो जाता है मुश्किल हो जाता है ना, तो पार कर या उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे स्थिति से बाहर निकलने के लिए ये ज्ञान की प्रक्रिया है। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया है, तो इस तरह ये क्षेत्र से संबंधित है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कोई इस ज्ञान की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं तभी एक व्यक्ति परम सत्य का सत्य के वो प्रगति करते हैं या प्रस्थान करते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद बोल रहे। तो इसके बिना इसका अर्थ है कि इसको स्वीकार किए बिना कोई भी व्यक्ति परम सत्य की ओर प्रगति नहीं कर सकता या उनके नजदीक नहीं आ सकते। तो और इस 20 जो लक्षण यहाँ पर भगवान बता रहे हैं उसमें से प्रमुख चीज क्या है, 11वें श्लोक के आरंभ में जो बताया गया है, मई छानन्य योगे न भक्तिरव्य विचारिणी। तो मई छानन्य योगे न भक्तिरव्य विचारिणी, तो अनन्य, तो मई छानन्य योगे न भक्तिरव्य विचारिणी कि मेरे अनन्य भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, अनन्य भाव से मेरा भक्ति करना। सो निरंतर और अनन्य भाव से मेरा भक्ति करना, उसको ज्ञान का लक्षण बता रहे थे भगवान। तो इसका अर्थ है कि वो इन 20 जो कभी कभी इनको 19 और 18 भी वर्णन किया गया, ईशोपनिषद के एक तात्पर्य में श्लोक प्रभुपाद 19 ऐसे कहते, कभी कभी 18 भी बोला जाता। एनीवे, तो 20 ज्ञान के लक्षण में ये जो है मई छानन्य योगे न भक्ति रव्य विचारिणी वो बहुत प्रमुख है। तो वो एक है तो क्या हो जाता है, अन्य सभी जो लक्षण है अपने आप प्रकट हो जाते हैं, या उसमें क्या है सम्मिलित है, सम क्या बोलते हैं, इट इज इंक्लूडेड इन दैट, सम्मिलित है उसमें, वो सम्मिलित है, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वो श्लोक को लेकर, यशास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण तत्र समासते सुरा हराव भक्त कुतो महत्गुना मनोरथे ना सतो दावतो बही। जो ऐसे अनन्य भक्ति में स्थित है या उनके ऊपर अटूट श्रद्धा है, उसके ऊपर उनके अंदर सभी जो देवताओं के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, गुण प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उस श्लोक में देवताओं के गुण प्रकट हो जाता है ऐसे बताया गया। प्रभुपाद बोलते हैं कि वो ज्ञान के सभी लक्षण प्रकट हो जाते हैं ऐसे बोलते, ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ नॉलेज। मतलब ये जो 19 अन्य जो ज्ञान के लक्षण हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं ऐसे श्री प्रभुपाद इसका अनुवाद कर रहे हैं आप। तो ये नहीं है तो अन्य जो कुछ भी है वो हो तो भी, नहीं होंगे वो हो तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, उसका कोई मौल्य नहीं है, सब नो वैल्यू। और हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर इन सभी 20 को दो विभाजन कर सकते हैं, एक है ज्ञान और वैराग्य, दूसरा वैराग्य। तो ज्ञान का प्रक्रिया ऐसे होता है, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होता है, या ज्ञान और वैराग्य को वो प्रकट करता है। तो इन सभी आप देखेंगे तो ये दोनों लक्षण दिखाई देंगे आपको, ज्ञान और वैराग्य। सो और यहाँ पर जो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मई छानन्य योगे न बहुत प्रमुख है, उसको इस दृष्टि से भी देख सकते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। जो वासुदेव भक्ति में लग जाते हैं, भगवान कृष्ण के भक्ति में लग जाते हैं, तो जनयत्यासु अपने आप ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाता है। तो इसको ऐसे देखा जाता है। हम लोग आजकल क्या है, ज्ञान का लक्षण क्या है, आपको बहुत बड़ा 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 डिग्री होना चाहिए या थियोरेटिकली ऐसे फिलोसोफाइजिंग करना चाहिए, लेकिन उसको वास्तविक जीवन में उनका कितने किस हद तक ये भौतिक जगत से वो अणासत्व हो गया है, या 24 तत्वों से बना हुआ यह शरीर के बंधन से कितना अलग हो गया है, उस दृष्टिकोण से एक व्यक्ति का ज्ञान को माप सकते हैं। वो लक्षण ज्ञान वैराग्य, तो ये ज्ञान की प्रक्रिया, ये एजुकेशन, ये शिक्षा है। और शिल प्रपात एक और चीज सार बोलते हैं, अभी वो उन्होंने क्या वर्णन किया, मई जानने योगी ना क्या है, वो बहुत ही सब कुछ वहाँ पर अंत हो जाता है, टर्मिनेट्स, उस स्तर तक लेके आना चाहिए हमें। और सार क्या है, आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना, ये आचार्योपासनम कहा गया है। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना कैसे किया जाता है, उनसे दीक्षा और शिक्षा लेकर किया जाता है। तो कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है या सार है वो, ये सभी ज्ञान के लक्षण का। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो सार है और भक्ति में भी बहुत महत्वपूर्ण है बोलते हैं। और दिव्य आध्यात्मिक जीवन उससे शुरू होता है, आरंभ होता है, ऐसे बोलते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन वास्तव में हमारा भक्ति जीवन जब हम लोग दीक्षा लेते हैं वहां से शुरू होता है, और दीक्षा मतलब शिक्षा भी है उसके साथ साथ, या दीक्षा का सार शिक्षा है। तो वहां से हमारा भक्ति जीवन शुरू होता है, उससे पहले हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो उस स्तर तक हमें लेकर आता है। जो भी हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, या जो भी भक्तों का संग करते हैं, श्रवण कीर्तन सेवा जो भी करते हैं, तो वो उस स्तर तक लेकर आता है। तो आध्यात्मिक गुरु का दीक्षा लेने से ही भक्ति आरंभ होता है, इसलिए महत्व। तो इस श्रील रूप गोस्वामी जब भक्ति के अंगों का वर्णन कर रहे थे भक्ति रसाम सिंधु में, तो वहीं से वो आरंभ करते हैं। पहले आदो गुरु आश्रयम, पहले आरंभ में क्या करना चाहिए, गुरु का आश्रय करना चाहिए। उसका अगला है कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, ऐसे कहते। दूसरा चीज क्या है, उनसे दीक्षा लेना चाहिए और शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे तीन चार, पहले जो अंग है वो आध्यात्मिक गुरु के संबंध में है। तो और उसका महत्व भी बोलते हैं, 10 अंगों का वर्णन करने के बाद वो कहते हैं कि ये पहले तीन चार जो है वो महत्वपूर्ण है, ऐसे बोलते हैं। उसको प्राप्त करेंगे तो, उसको करेंगे तो अन्य भी उसके अनुगमन करते हैं, तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है। तो ये सब ज्ञान के लक्षण हैं, और अन्य या प्रक्रिया है, अन्य सब कुछ जो है वो अज्ञान है। तो पहले कहाँ से शुरू हो रहा है, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, अमानितम। तो अमानितम शब्द का क्या अर्थ होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि दूसरों के द्वारा सम्मानित होने की जो संतुष्टि मिलती है उसके लिए आतुरित नहीं होना, उसको ज्ञान कहते हैं या विनम्रता कहते हैं। तो अच्छा क्या होना चाहिए, रिसेप्शन, रिसेप्शन बोलते हैं स्वागत, स्वागत होना चाहिए। आप दूसरे शहर से आ गए तो क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, गार्लैंड कार वगैरह सब कुछ है ना। तो हाँ, तो ये सब क्या है, विनम्रता के विरुद्ध है ये, या एक्सपेक्टिंग, रिसेप्शन, रेस्पेक्ट हो गया, तो ये सब विनम्रता के विरुद्ध है। हमारा यही है ना फिलोसफी, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। और उसके बाद प्राइडलेसनेस, दम्भहीनता। तो दम्भहीनता विशेष करके ये कलयुग में हम लोग देखते हैं, तो सभी लोग, और ये कलयुग क्या है, दम्भ और कलह का युग है, सब लोग दाम्भिक बर्ताव करते हैं, ये बहुत ही प्रचलित है। तो आधुनिक जमाने में लोग हैं अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं और दिखावा करते हैं, लेकिन सब दम्भ है बस। तो वैसे विशेष करके ये दम्भ शब्द ये धार्मिक जीवन के संबंध में है। कोई कोई लोग धार्मिक जीवन को स्वीकार करते हैं, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि धार्मिक जीवन को स्वीकार करते हैं ये जाने बिना कि ये सही है क्या नहीं है, तो उसको दम्भ कहते हैं। तो क्योंकि वो लोग भी सबको दिखावा करना चाहते हैं कि मैं भी बहुत धार्मिक हूँ, इसलिए वो सही है नहीं या कुछ नहीं जरूरत नहीं है, तो सिर्फ वो बाहर से दिखावा करना चाहिए, उसको दम्भ कहते हैं। सो कभी कभी ऐसे वैष्णव धर्मों में भी ऐसे दम्भता पाई जाती है। बंगाल में आप जानते हैं ना, इतने सारे अपसंप्रदाय है, तो बंगाल में हो या आजकल सब जगह प्रचलित है, तो वैष्णव धर्म के नाम पर भी, भक्ति के नाम पर भी दम्भता दिखाई देता है। तो चूंकि ये कलयुग का लक्षण है, वो इतना फैला हुआ है, तो इतना ढांभिकता फैला हुआ है कि वो तथाकथित या वैष्णव धर्म को स्वीकार करने के बाद भी वो दिखाई देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ये ज्ञान का लक्षण है। और प्रभुपाद जी इसके पहले विनम्रता इसलिए आता है, विनम्रता इसलिए नहीं रहता है, एक व्यक्ति मान सम्मान की जो आशा है उसके लिए बहुत आतुर रहता है, क्योंकि वो किसका लक्षण है, वो देहात्म बुद्धि का लक्षण है बहुत, तो उसके कारण, देहात्म बुद्धि के कारण एक व्यक्ति ये शरीर से संबंधित जो मान सम्मान की जो भावना है वो रखता है, तो ये सब भ्रम है, भौतिक भ्रम के पीछे पड़े रहते हैं लोग, तो उसको वो विनम्रता नहीं है। और दूसरा दम्भ, दम्भहीनता होना चाहिए। और उसके बाद अहिंसा, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अहिंसा का ऊंचा एक अर्थ बता रहे हैं। जनरली हिंसा मतलब क्या होता है, जो दूसरों को हत्या करना या उनके शरीर के ऊपर नाश करना, शरीर को नाश करना, उसको हिंसा कहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद हिंसा का परिभाषा एक अंदरूनी या उसका ऊंचा सिद्धांत यहाँ पर बता रहे हैं। तो हिंसा मतलब दूसरों को दुख में डालना, उसको हिंसा कहते हैं। तो भौतिक जगत में तो दुखालयम है ये, जब तक हम लोग सही आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान नहीं करेंगे तब तक वो क्या हो जाता है, हम लोग दूसरों को दुख में ही डाल रहे हैं, दूसरों के ऊपर हिंसा कर रहे हैं। तो ये हिंसा का अर्थ होता है। तो लोग जो अहिंसा बोलते हैं वो वास्तव में अहिंसा के नाम पर भी जो कुछ भी वो प्रचार कर रहे हैं वो वास्तव में क्या है, हिंसा ही है, क्योंकि दूसरों को दुख से मुक्त नहीं कर रहे। तो इतिहास में बहुत सारे ऐसे क्रूर व्यक्ति हुए हैं, हिटलर, मुसोलिनी या स्टालिन या वो सब बहुत सारे लोग, उन्होंने बहुत हिंसा किया है, बहुत लोगों का हत्या किया उन्होंने, लेकिन उनसे भी ज्यादा वो हत्यारे, वो हिंसक है, जो लोगों को नहीं, लोग उनके पीछे पड़े रहते ज्ञान के, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो लोग उनको गुमराह करते या सही ज्ञान नहीं करते देते हैं उनको, इस दुख से, दुखमय जगत से मुक्त नहीं करते, वो लोग ज्यादा हिंसक है। तो आजकल बहुत है ना, धर्म के नाम पर बहुत प्रचार होता है, लव पीस या है ना ऐसा, और उनको क्या है, नोबेल उपहार भी दिया जाता है, पुरस्कार भी दिया जाता है, तो शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार, लेकिन सब लोग हिंसा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जब झांसी में प्रचार कर रहे थे, वो 1951-52 अभी ऐसे आरंभ में, 50वीं सदी के आरंभ में, दशक के आरंभ में, तो वो उस दिन जो वो लोग तथाकथित जयंती मनाते हैं ना, गांधी जयंती तथाकथित, वो जयंती नहीं होता है वो, तो जयंती शब्द सिर्फ भगवान कृष्ण के जन्म को या प्रकट को उपयोग किया जाता है। तो वो लोग प्रभुपाद जी को बुलाए, आप थोड़ा अहिंसा के ऊपर प्रवचन दीजिए आज, क्योंकि एम के गांधी ने क्या किया, अहिंसा का प्रचार किया, तो अहिंसा से स्वतंत्रता को जीत लिया, ऐसे कुछ वो प्रचार कर। तो प्रभुपाद जी बोले, तो सही हिंसा का, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद परिभाषा दे रहे हैं, उसको वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि आप लोग क्या हिंसा, अहिंसा का बात कर रहे हो, ये सब बकवास है, ऐसा सीधा उनको बोल दिया। तो क्योंकि उनको सही हिंसा अहिंसा का कोई ज्ञान नहीं है, तो ये अहिंसा है, लोगों को दुख से बचाना, उनको एक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके उनको दुख से बचाना, वही अहिंसा है। और शांति, सहनशील, शांति को सहनशीलता कहते हैं। तो जब भी आप भगवान के बारे में प्रचार करेंगे तो लोग आपको अपमान करेंगे, ये भौतिक जगत का लक्षण है कि अपमान करेंगे आपको, है ना, अपमान करेंगे या गुणगान भी करेंगे, लेकिन आप इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, उसको सहन करना चाहिए। तो कभी कभी आपके ऊपर हिंसा भी कर सकते हैं। अभी हिंसा का अर्थ क्या है, क्या, तो जैसे यहाँ पर प्रहलाद महाराज का उदाहरण लेते हैं, तो उसके पिता ने ही क्या किया, उनको अच्छा नहीं लगा कि ये भक्ति कर रहे करके, वो उनको मारने के लिए प्रयास किया। ऐसा हम लोग देखते हैं, नित्यानंद प्रभु को भी मारा गया। तो ऐसे लोग अपमानित करेंगे या आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, तो इसको सहन करना पड़ेगा। अंत में एक शांति का अर्थ होता है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अंत में निष्कर्ष में बता रहे हैं, कितने तकलीफदायक स्थिति भी हो फिर भी आगे बढ़ना, बहुत ही स्थिरता से आगे बढ़ना, उसको शांति कहते हैं। जैसे परीक्षित महाराज थे, उनको 7 दिन में मरना था, बहुत ही कठिन परिस्थिति है, फिर भी वो स्थिर, बहुत ही सुदृढ़ थे अपने, तो उसको शांति कहते हैं। और उसके बाद आज जब हम सरलता, तो सरलता का अर्थ होता है, क्या बोलते हैं उसको, सरलता सो प्रेजेंटिंग द ट्रूथ इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, सो कोई डिप्लोमेसी नहीं होना, कूटनीति नहीं होना चाहिए, तो उसको सरलता कहते हैं। और शत्रु को भी क्या कर देना चाहिए, सत्य को सीधा प्रस्तुत करना चाहिए, उसको सरलता कहते हैं। तो शिलोक्ति सिद्धांत सरस्वता को भी वर्ग कहा करते थे, सरलता यह पहला लक्षण है तो वैष्णवों का, वैष्णवों को सरल होना चाहिए। और उसके बाद आचार्योपासना, तो प्रभुपाद जी उसको अप्रोचिंग स्पिरिचुअल मास्टर, आचार्य के पास जाना, आध्यात्मिक गुरु के पास जाना, इसका अर्थ होता है आचार्य को उपासना करना। जैसे हम लोग हर रोज गुरु पूजा करते हैं, गुरु पूजा प्रभुपाद जी क्या करते थे, गुरु पूजा करने से क्या होता है, हमें दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाता है। तो इसलिए उसको अटेंड करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग व्यास पूजा मनाते हैं, ये सब आचार्य उपासना है। तो और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि आचार्य आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनके शरण में जाना चाहिए, बहुत ही विनम्रता से उनको जिज्ञासा करना चाहिए और सेवा करना चाहिए। भगवान ने भी बताया ना, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेश शांति के ज्ञानम ज्ञान न तत्व दर्शन। हाँ, तो वो हमें ज्ञान प्रदान करेंगे या हमारे ऊपर आशीर्वाद करेंगे या शिष्य को आशीर्वाद करेंगे। तो उनका आशीर्वाद से क्या होता है, वो क्या आशीर्वाद है उनका, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं या भगवान का कृपा ऊपर से नीचे आता है, परंपरा में ऐसे आता है। तो जब भगवान आध्यात्मिक गुरु हमारे ऊपर कृपा करेंगे या हमें आशीर्वाद देंगे तो क्या हो जाता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए तब जाके जो शिष्य है तो बहुत ही शीघ्रता से प्रगति करता है। और प्रभुपाद अंत में कह रहे हैं, तब जाके नियमों को पालन करना आसान हो जाता है। कभी कभी हमें ऐसे होता है ना, कितना मुश्किल हो जाता है नियमों को पालन करना, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक गुरु के जो आशीर्वाद है वो प्राप्त नहीं किए। तो जब आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो उसके बाद शौचम, ये भी एक ज्ञान का लक्षण है। तो शौच का दो अर्थ होते हैं, इसके पहले भी प्रभुपाद जी वर्णन कर चुके हैं भगवद्गीता में। तो एक अंदरूनी शुद्धता स्वच्छता और बाहरी शुद्धता और स्वच्छता। बाहरी शुद्धता और स्वच्छता स्नान करने से होता है, कम से कम दो बार तो करना चाहिए। और अंदरूनी शुद्धता और स्वच्छता क्या होता है, तो वो मन को शुद्ध करने से, मन का शुद्धिकरण हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके बारे में बताया गया। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदामुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्वपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त को मार्जन करने वाला है, तो वो अभी भौतिक इच्छाओं से कल्मशों से वो क्या हो गया है, दूषित हो गया है। कभी कभी बाहरी शुद्धता भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल और सूक्ष्म। स्वच्छता क्या है, ये स्थूल है, और शुद्धता क्या है, वो सूक्ष्म है। जैसे कोई ऐसे क्या है, स्पून से खाएंगे ऐसा लगता है कि हाथ से स्वच्छ है कर, लेकिन शुद्ध नहीं है वो, सही ना है। तो वो अंतर है इन दोनों में से। कोई खाते हैं और या वो कपड़े से, क्या है पेपर, आजकल वो पेपर आता है ना, उससे क्या कर देते, टिश्यू पेपर, हाँ, तो उससे ऐसे पोछ सकते हैं, लेकिन वो स्वच्छ हो सकता है लेकिन शुद्ध नहीं है। तो ये स्थूल और सूक्ष्म शुद्धता के कई सारे नियम होते हैं, है ना। खाते हैं हम लोग, वो जगह अशुद्ध बन जाता है। वहाँ पर छल के और इधर उधर छल दिया तो क्या हो जाता है, वो सब जगह अशुद्ध हो जाता है। और सो के उठते हैं और उससे भी अशुद्ध हो जाता है वो जगह। तो ये सब अशुद्धता के नियम होते हैं, या स्वच्छता शुद्धता या स्वच्छता के नियम, ऐसे कई सारे नियम हैं। तो ये सब चीज़ों को समझना चाहिए, वही ज्ञान का लक्षण है। और उसके बाद स्थैर्य, तो स्थैर्य को प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, दृढ़ता बता रहे हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोलते हैं अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। तो ऐसे संकल्प संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता, ठोस प्रगति यहाँ पर बोलते हैं कैनॉट मेक टेंजिबल प्रोग्रेस। दृढ़ता के बिना कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो दृढ़ता कैसे आता है, वो तपस्या से आता है। और दृढ़ता भी तीन प्रकार के बोलते हैं भगवान, बाद में जाके वर्णन करेंगे। तो सत्वगुण का जो दृढ़ता है वो हमेशा के लिए रहता है। रजोगुण में थोड़ा समय के लिए दृढ़ता होता है और बाद में खत्म हो जाता है। और तमोगुण में दृढ़ता होती नहीं है, सिर्फ कल्पना है। तो ऐसे सत्वगुण में होना चाहिए हमारा दृढ़ता, उसके कारण हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। सो दृढ़ता, धृति, धृति शब्द से दृढ़ता आता है। ये एक चौथे अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वो अंत में कहाँ से आता है, प्राण से आता है, प्राण वायु ना, प्राण से आता है। एक शक्ति के समान है ये, है ना, हमारे अंदर। तो जिसके कारण एक व्यक्ति बहुत ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। तो है ना, तो उसके कारण ये दृढ़ता है, वो दृढ़ता है स्थैर्य, स्थैर्यम। और उसके बाद आत्मविनिग्रह, तो आत्मविनिग्रह और इंद्रियातेषु वैराग्य, दोनों का यहाँ पर प्रभुपाद जी उल्लेख कर या समझा रहे हैं। तो आत्मविनिग्रह मतलब प्रभुपाद जी देखिए आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो भक्ति के लिए अनुकूल कारक है उसको स्वीकार करना और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको नकार देना, उसको आत्मविनिग्रह कहते हैं। वो एक्चुअली ऐसे कैसे होता है, वो हमारे इंद्रियों के ऊपर हमें काबू है तभी हम लोग जो अनुकूल है उसको स्वीकार करेंगे और प्रतिकूल है उसको नकारेंगे, है ना। हमारे इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं है तो हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो प्रतिकूल क्या है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौल्यंश षड्वीर भक्तिर विनश्यति। ये भक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक है, छः चीज ये प्रतिकूल है। और भी कई सारे हैं लेकिन उपदेशामृत में ये छः बताए गए। तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद कहा करते थे इसके ऊपर, हम भक्ति में आए हैं वो बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन ये चीज करेंगे, ये छः चीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सौभाग्य है वो दुर्भाग्य हो जाएगा सब। तो अत्याहार, ज़्यादा अन्न खाना, प्रसाद प्रसाद लोग को प्रसाद खाते हैं ठीक है, लेकिन ज़्यादा इकट्ठा करना तो उसको भी अत्याहार कहते हैं। आजकल तो बहुत सूक्ष्म तरीके से सब इकट्ठा होते हैं, लैपटॉप में वगैरह इकट्ठा करते हैं आजकल बहुत सारे चीज अत्याहार, बाहर के भी इकट्ठा, ज़्यादा चीज़ों को हमें इकट्ठा इकट्ठा होने से मन विचलित हो जाता है, है ना। सो अत्याहार प्रजल्प, प्रयास, प्रयास मतलब जो चीजों को बहुत ही कठिन है उसको प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, उसको प्रयास कहते हैं। और प्रजल्प तो अनशन बकना, उसको प्रजल्प कहते हैं, अनाप शनाप बकना उसको प्रजल्प कहते हैं। तो प्रजल्पो नियमाग्रह, तो नियम को पालन नहीं करना, या नियम आगे बढ़ने के लिए पालन, सिर्फ दिखावा के लिए करना या नाम के लिए करना उसको, तो नियमाग्रह। जनसंगस्य लवलेश, जो असत संग करना और लोभी होना भौतिक चीजों के प्रति या भौतिक वस्तुओं के प्रति, तो ये सब चीज अनुकूल कारक नहीं। इसको त्यागना क्या है? आत्मनिग्रह। और जो हमें अनुकूल कारक है उसको स्वीकार करना, उत्साह निश्चय और धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तना संगत्या सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसीदति। तो ये अनुकूल कारक चीज है, उसको स्वीकार करना आत्मा निग्रह है। तो हम लोग पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के आरंभ में हम लोगों ने देखा कैसे अर्जुन पूरी तरह से उनको इंद्रियों के ऊपर काबू था। वास्तव में क्षत्रिय भीख मांग के रहना उनके लिए वो कभी होगा नहीं, वो उनके विरुद्ध है, इट इज अगेनस्ट देयर ग्रेन बोलते हैं ना, ऐसा है। लेकिन फिर भी वो करने के लिए तैयार थे, वो उनका आत्मनिग्रह के लक्षण है वो। और तो ये तभी होता है जब आत्मनिग्रह होता है, जो हम लोग जरूरी चीजों को स्वीकार करना है उनको त्याग देना। इंद्रियातेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थ हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में बहुत, कितने सारे इंद्रियों के विषय होते हैं, तो उनको उससे वैराग्य, वो भी आत्मनिग्रह के बारे से ही आता है। तो विशेष करके प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं जिह्वा को नियंत्रण करना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। तो उसको कैसे किया जाता है? सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसे करने से क्या हो जाता है? जीवा नियंत्रित हो जाता है। तो जीवा क्या करता है? बहुत सारे व्यंजनों का आस्वादन करना चाहता है ना? वो चीज है। और दूसरा है कि अनशन बकना चाहता है वो। तो ये दोनों को कैसे नियंत्रण किया? प्रसाद स्वीकार करके और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र को जप करके, तो इसको ऐसे नियंत्रण किया जाता है। ऐसे आंखों को भी हम लोग भगवान कृष्ण के सुंदर रूप को देखना चाहिए, और हमारे कानों को उनके बारे में श्रवण करने के लिए लगाना चाहिए, नासिकाओं को उनको अर्पण किए जो है पुष्प को सुनने के लिए लगाना चाहिए। तो ये भक्ति के मार्ग है। तो ऐसे भक्ति के मार्ग को स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, आत्मविनिग्रह और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम दोनों हो जाएंगे। तो ये नहीं करेंगे तो क्या? इंद्रियों से आकर्षित हो जाएंगे, इंद्रिय विषयों से आकर्षित हो जाएंगे तो बहुत ही खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक हो सकता है। हम लोग जानते हैं ना, जो कुछ ऐसा कीड़ा होता है, क्या बोलते हैं, पतंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो अग्नि को देखने के लिए उसको कितना उनको आनंद मिलता है, वो देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर देता है, इतना तेजी से अग्नि में प्रवेश कर। तो ऐसे आंख के जो अर्थ है, विषय है, उसके कारण उसका मृत्यु हो जाता है। तो इंद्रियार्थ, और जो त्वचा है, त्वचा या मैथुन सुख, उसको प्राप्त करने के लिए बड़े हाथी भी पकड़े जाते हैं, बंदी बनाए जाते हैं, आप जानते हैं वो कैसे किया जाता है ना। ऐसे ही वो एक एक प्रकार का क्या होता है, वो हिरण होता तो वो सुनने के लिए, हालांकि उसके गले में ही वो सुनने, वो बहुत ही सुगंधित चीज होता है, कस्तूरी, कस्तूरी मृग बोलते हैं। तो वो इधर उधर जाके गिर के मर जाता है। और दूसरा प्रकार का हिरण, उसको कैसे, वो हिरण कैसे होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव रहता है, वो थोड़ा सा आवाज आ गया तो भाग जाता है। लेकिन उसको कैसे पकड़ा जाता है, वो भागता भी बहुत तेजी से ना, तो उसको कैसे पकड़ा जाता है, तो वो जो बांसुरी बजाते हैं वो शिकारी, और उसको सुनने के लिए वो आकर्षित हो जाता है और फंस जाता है। तो ऐसे हिरण फंस जाता है। और क्या है, जो मछली है, जिब्वा की लालसा से वो पकड़े जाता है ना, कुछ ऐसे चीज को वो लगा के वो लोग पानी में फेंक देते हैं, तो वो तुरंत वो जब खाने के लिए आ जाता है तो वो फंस जाता है वहाँ पर, वो हुक में और उसको निकाल देते हैं। तो ऐसे ये सभी इंद्रियों को तुष्ट करने के कारण क्या हो जाता है, मृत्यु प्राप्त करते हैं। कितना खतरनाक हो सकता है ना, इंद्रियों को संतुष्ट करना, इंद्रिया। तो ऐसे कहा भी जाता है, ऐसे सुना था हमने, कि इन अलग अलग हम जो उदाहरण देखे उनमें से एक एक, और वो उन पशुओं में एक एक जो इंद्रिय विषय के प्रति, एक एक और जो इंद्रिया प्रबल रहते हैं और इंद्रिय विषय के प्रति वो आकर्षित रहते हैं। तो लेकिन मनुष्य जीवन में सबसे आकर्षित रहते हैं, और हम पहले चर्चा करें क्यों स्त्री के प्रति इतना आकर्षण रहता है, क्योंकि ये सभी वो प्रसन्न करते हैं या संतुष्ट तुष्ट करते हैं सभी चीज़ों को, आपको तुष्ट करना। अंत में जीवात्मा संतुष्ट नहीं होता है, वो आनंद है। ये सिर्फ कल्पना है, ये सिर्फ कल्पना है, मनोगता, ये कल्पना है। ये इस कल्पना के कारण मन में ऐसा हम लोग चिंतन करते हैं कि हाँ ये मुझे पूरा संतुष्टि प्राप्त कराएगी ऐसे करके। लेकिन दुख एव नते, अंत में दुख यो न एव ते, अंत में वही दुख ही प्राप्त होता है, कुछ नहीं। दुख और बंधन का कारण है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम तयोरथ हृदय ग्रंथि माहु अत ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्त जनस्य मोहो यम अहम ममेति। ऐसे हम लोग उसमें बंध जाते हैं इन चीजों में, तो ये खतरनाक हो सकता है। इंद्रियार्थेषु वैराग्य नहीं है तो, और ज्ञान का लक्षण है इंद्रियार्थेषु वैराग्य मानना सके, तो वो तभी होता है इंद्रियार्थेषु वैराग्य, जब हम लोग भक्ति स्वीकार करते हैं, सभी यू नो हमारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश भक्ति रुच्यते, उसको भक्ति कहते हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, इसलिए इसके कारण ऐसे इंद्रियों से, इंद्रिय अर्थ से मुक्त हो सकते हैं। इसके कारण भगवद गीता में तो सिर्फ भक्ति का ही वर्णन हुआ है, भक्ति ही भगवद गीता का निष्कर्ष है। जो तथाकथित व्याख्यानकार जो पाठक को गुमराह करते हैं इस भक्ति सिद्धांत से, वो सही नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है मतलब। और उसके बाद में अनहंकार, ये बचा अनहंकार, अहंकार न होना, वो भी ज्ञान का लक्षण है। तो अहंकार क्या होता है, ये शरीर से अपने आप को पहचानना ही अहंकार है, आइडेंटिफाइंग आवर सेल्फ विद दिस वर्ल्ड। हम लोग ये बहुत ही जगत, उसका अर्थ क्या होता है, इसका बहुत गहरा अर्थ, इसका अर्थ होता है कि हम अपने आप को इस बहुत ही जगत के सृष्टि के सृष्टि से सृष्टे हैं या आए हैं सोचते हैं हम, वी आर प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मटेरियल, प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल नेचर। तो हम इस भौतिक सृष्टि से आए हैं ऐसे सोचते हैं, या दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में जो भी चीज है उससे हम लोग, शरीर से, शारीरिक पदवी से, उपाधियों से हम लोग अपने आप को पहचानते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो ये सब अहंकार है। ये तो क्योंकि ये वास्तविक हमारा पहचान नहीं, वास्तविक हमारा पहचान है हम आत्मा है, भगवान के नित्य दास है, वो वास्तविक पहचान। तो इसका यहाँ पर ईगो, फॉल्स ईगो और सही ईगो, सही अहम भावना और जो मिथ्या अहंकार, जो दो बोलते हैं ना, मिथ्या अहंकार और सही अहंकार, वो दो ऐसे होते हैं। तो मिथ्या अहंकार मतलब ये शरीर से पहचानना, सही अहंकार मतलब अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद से प्रभुपाद उल्लेख कर रहे। तो अहम भावना तो रहेगा क्योंकि वो हमारे अस्तित्व से संबंध है। कल हम लोग चेतना के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो चेतना क्या है, मैं हूँ, उसको चेतना कहते हैं, या जो अस्तित्व का जो अनुभूति होता है उसको चेतना कहते हैं। तो क्योंकि हमारे अस्तित्व जो है वो शाश्वत है, और अस्तित्व का जो अनुभव है मैं हूँ वो भी शाश्वत है, लेकिन मैं कौन हूँ उसका जब गलत पहचान हो जाता है तो उसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। जब हम लोग अपने आप को ये भौतिक जगत से संबंधित करते हैं या पहचानते हैं तो वो मिथ्या अहंकार है। जो वास्तविक अहंकार है वो हम भगवान के नित्य दास है, ऐसे कहते हैं। कभी कभी मायावादी लोग, हमेशा वो लोग प्रचार करते रहते हैं अहंकार को त्यागना चाहिए, अहंकार को त्यागना चाहिए, अहंकार को त्यागना चाहिए, उनका वही मंत्र होता है ना। वो लोग सबसे बड़ा अहंकारी लोग होते हैं क्योंकि वो भगवान बनना चाहते हैं ना। वास्तव में अहम भावना को कभी त्याग नहीं सकते क्योंकि वो अपने अस्तित्व से संबंधित है। तो हमें मिथ्या अहंकार को त्यागना है, भौतिक जगत के जो पहचान है उसको त्यागना है, उसको ज़्यादा हमें डिग्री, बड़ा बड़ा डिग्री है, बड़ा बड़ा पदवी है, हम लोग समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हम वो है, ये वो है, ये सब नित्य अहंकार के लक्षण है बस, या अज्ञान के लक्षण है, अंधकार के लक्षण, वो ज्ञान के लक्षण नहीं है। श्रीमद् भागवतम में तृतीय स्कंद में 5 प्रकार के अहंकार का वर्णन किया है, नित्य अहंकार, तो आप पढ़िए उसको, बहुत अच्छा है। एग्जैक्ट रेफरेंस आई डोंट रिमेम्बर नाउ, कैन टेल यू इट। तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब अज्ञान के लक्षण है, या 5 काइंड्स ऑफ इग्नोरेंस आई थिंक इट इज, 5 काइंड्स ऑफ इग्नोरेंस। तो और उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, तो दुख दोषान दर्शनम उनको समझना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि करके दुख है करके हमें समझना, दर्शनम, दर्शन अनु, उसको अनुदर्शनम कहते हैं। दर्शनम मतलब देखना भी होता है और समझना भी होता है, यहाँ पर उनको समझना उसको अनुदर्शनम कहते हैं। तो समझना, हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग पीड़ित है, बहुत सारे लोग जन्म ले रहे हैं, बहुत सारे वृद्ध लोग हैं, बहुत सारे कष्टों को, यातनाओं को सामना कर रहे हैं, लेकिन कोई उनका अनुदर्शन नहीं करते, उनको समझते नहीं हैं। इसका अर्थ है ये सब चीज़ हमें भी होगा, हम भी इनके इनसे गुजरना पड़ेगा, ऐसे कोई समझते नहीं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको विस्तार से शास्त्रों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हम सब लोगों को समझने के लिए या समझाने के लिए विस्तार से वर्णन हुआ है, विशेष करके श्रीमद् भागवत में वगैरह है ना। तृतीय स्कंद में कपिल देव अपने माता देवहूति को 2 अध्याय में इसका वर्णन करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का पूरा 2 अध्याय इसको समर्पित किया, विशेष करके जन्म। तो प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं द कंडीशन ऑफ द व्हाट इज दैट वर्ल्ड ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड इन श्रीमद् भागवतम बहुत अच्छा बता रहा है, द वर्ल्ड ऑफ अनबॉर्न, द चाइल्ड स्टे इन द womb ऑफ द मदर, इट्स सफरिंग एटसेट्रा, आर वेरी ग्राफिकली डिस्क्राइब. तो बहुत ही विस्तार से वर्णन करते हैं वर्ल्ड ऑफ द अनबॉर्न, है ना, वो कैसा दुनिया है अंदर, इसके बारे में तो बहुत अच्छा विस्तार से वर्णन कर चुके हैं. तो उनको समझना चाहिए. तो ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबके लिए होता है और कोई भी इनको नकार नहीं सकते हैं, इसलिए ये वास्तविक समस्या है जीवन के. इनके लिए कोई भौतिक हल भी नहीं है, ये वास्तविक समस्या है जीवन के. फिर भी लोग क्यों नहीं समझते हैं, हम लोग देखते हैं उसके बारे में. सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं पश्यन् अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखते. यानि यानि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम् शेषस्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अतःपरम्. तो बार बार देखते हैं कि लोग मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, फिर भी इसको लगता है कि मुझे ये नहीं होगा, मैं हमेशा के लिए रहूँगा, मैं हमेशा के लिए सुखी रहूँगा, मेरा जीवन बहुत सुखी होगा. ये लोग बुद्धिमान नहीं, बहुत बहुत बुद्धिमान हूँ, ऐसे वो लोग बहुत सोचते हैं. वो जानबूझकर इसके ऐसे सोचते भी नहीं होंगे तो उनको ऐसा ही धारणा रहता है जीवन का धारणा, तो इसलिए वो आश्चर्यजनक चीज है ऐसे, है ना. युधिष्ठिर महाराज का दुनिया का ये सबसे बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ है कि ये लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि का को समझते नहीं, है ना. बहुत सारा ऐसा मेडिकल स्टूडेंट है, वो लोग क्या करते हैं, उनको क्लिनिक्स होता है, थेरेटिकल क्लास होता है, उसके साथ साथ वो जाके अस्पताल में मरीजों को अध्ययन करते हैं, उनके लक्षण जो जो रोग है उनका लक्षणों को अध्ययन करते हैं, या ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है, या वो बड़ा डॉक्टर को देखते हैं. तो ऐसे होता है. हाँ, ये देख रहे हैं ये लोग मूर्ख लोग कि कितने सारे लोग जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे, कितने सारे यातना. आप नरक का दृश्य देखना चाहते हैं तो आजकल के बड़े बड़े ये हॉस्पिटल वहाँ पर है, जाकर थोड़ा दर्शन कर सकते हैं. और कितने सारे लोगों को, लोग भी मर रहे, लेकिन ये मूर्ख इतना भी समझता नहीं है कि ये लोगों को भी ऐसा ही होगा. सिर्फ डॉक्टर होने से क्या है, मैं उससे मुक्त होता है. वो उस हॉस्पिटल के बाहर आ गया, अपने गर्लफ्रेंड के साथ इधर उधर पार्टी मना के लग जाता है, और सोचता है कि हम लोग बहुत सुखी रहेंगे, हम बहुत, हमारा जीवन बहुत रोमांटिक रहेगा, ऐसा सोचता है. तो ये मूर्खता है, ये बहुत ही जरूरत का. तो हम इसलिए विशेष उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि है ना, ये औषधीय विज्ञान विशेष करके इसके संबंध में है ना. तो ये मूर्खता है. तो इसको प्रॉपर यहां पर बोलते हैं वन शुड हैव अ पेसिमिस्टिक वर्ल्ड व्यू, ऐसे बोलते हैं पेसिमिस्टिक. अनलेस वी हैव अ पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ दिस मटेरियल लाइफ, कंसिडरिंग द डिस्ट्रेस ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज, देर इज नो इम्पिटस फॉर अवर मेकिंग एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ. तो पाश्चात्य देश के दार्शनिक इतिहास पढ़ेंगे, उतना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है वो, कुछ श्लाघनीय क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा इट्स नॉट सच एडोरेबल और समथिंग लाइक दैट, प्रशंसनीय नहीं है. उसमें कुछ ऐसे दार्शनिक हुए उनको निराशावादी कहते हैं, और कुछ ऐसे दार्शनिक हुए कुछ आशावादी लोग. वो निराशावादी लोग आशावादियों का खंडन करते हैं, और आशावादी लोग निराशावादियों का खंडन करते हैं. लेकिन यहाँ पर भगवद गीता जब प्रॉपर बोल रहे पेसिमिस्टिक, मतलब क्या अनुवाद किया उसको, निराशावाद. तो निराशावाद मतलब ऐसे पाश्चात्य देश के दार्शनिकों के समान नहीं है. वो भारत में भी जो ज्ञानी होते हैं मायावादी सांख्य, वो लोग भी निराशावादी है ना. तो ये वास्तविकता का वर्णन है, ये कोई ऐसा निराशावाद नहीं है. हालांकि प्रॉपर बोल रहे तो और होना चाहिए हमें, भौतिक जीवन से निराशा होना चाहिए, जब तक भौतिक जीवन से निराशा नहीं होगा कैसे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करेंगे। अभी भी हम सोचे कि हम दुनिया में बहुत बड़ा व्यक्ति बनेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो ऐसे करेंगे तो होगा नहीं, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करेंगे। तो या दूसरे शब्दों में हम लोग अभी भी सुख प्राप्त कर सकते हैं भौतिक जीवन में, ऐसी जो आशा है वो क्या है, वो वास्तविकता नहीं है। तो हमें निराशा होना चाहिए, वो निराशा सिर्फ ऐसे, कभी कभी ऐसे लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज दैट, अंगूर, ग्रेप्स आर सोर, ऐसे वो क्या है, वो एक कथा है ना, लोमड़ी पंचतंत्र में आता है कथा, लोमड़ी जो वुल्फ होता है ना, जैकल को भी लोमड़ी बोलते हैं, ओके, तो सियाल, जैकल मतलब सियाल, सियाल और सियार, सियार सियार, तो वो हमें विशेष करके वो छोटा होता है और अंगूर क्या है, ऊपर होते हैं, वो क्या करता है, वो छलांग मार के उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसको प्राप्त नहीं होता है और सब जगह एडवर्टाइज करता है कि अंगूर क्या है, खटे है करके, उसको प्राप्त नहीं हुआ इसलिए अंगूर खटे है। ये आशावादी लोग निराशावादियों को क्या बोलते हैं, आप लोग इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त नहीं कर पाए इसलिए क्या है, आप लोग ऐसे सोचते हैं कि ये इस जगत में सुख नहीं है, ऐसे कहते हैं। लेकिन ये जो निराशावाद यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद, ऐसे अंगूर कटे ऐसे निराशावाद नहीं है, ये वास्तविकता का वर्णन है, इट्स एनालिसिस ऑफ द रियलिटी, वास्तविकता का। तो इसको देख नहीं पा रहे हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को देख नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ा हॉस्पिटल जाके आओ थोड़ा। लेकिन ऐसे महान मूर्ख है इस दुनिया में, लेकिन वहां जाने के बाद भी समझते नहीं है। तो क्यों समझते नहीं है लोग, क्यों समझते नहीं है इस दुनिया के, या कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं वो लोग कि ये तो एकाध बार आ जाते हैं, अन्य बीच बीच के समय में हम लोग सुखी हो सकते हैं। हम लोगों ने चर्चा किया ना, इल्यूजरी हैप्पीनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, कैसे ये भ्रामक है भौतिक जगत। हम बहुत सारा कारण दिया ना, याद है आपको, तो 8 कारण दिया हम लोग, ये कैसे मिथ्या सुख है। और इसके साथ साथ ये भी नहीं है, ये 4 भी नहीं, और 3 भी है, आदि आत्मिका, आदि दैविका और आदि भौतिक क्लेश। प्रॉपर बोलते हैं दे मे असाइल वन एट अ टाइम और ऑल एट अ टाइम बोलते हैं, तो एक ही साथ प्रवाह कर सकते, प्रहार कर सकते हमारे ऊपर, या सभी मिलकर भी प्रहार कर सकते। हाँ, कभी कभी आता है ना, कोई हमारे डॉक्टर एक बोल रहे थे हमें, जिनको हम प्रचार कर रहे थे, वो बोल रहे थे कभी कभी लोग इतने सारे रोगों से लेकर आते हैं कि एक को ट्रीट करने से दूसरा बढ़ जाता है। तो वो हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, एक ही आ सकते हैं या बहुत सारे एक ही समय में प्रहार कर सकते हैं हमारा जीवन। तो ये वास्तविक दर्शन है, अनुदर्शन, इस जगत का दर्शन, जगत दर्शन। कभी कभी ऐसा कुछ न्यूज़पेपर होता है ना, दैनिक दर्शन, क्या दर्शन, कुछ दर्शन होते हैं, सांध्य दर्शन, वो लोग दर्शन कराता है, वो जो जिसमें उसमें दर्शन करा रहा है वो सब बकवास है, वो वास्तविकता नहीं है। और उसमें भी देखते हैं हम लोग, वो इधर मर गया, वो मर गया, इसको ये बीमारी हो गया, ये हो गया, ऐसे वही, इसने इसको हत्या किया, उसने इसको, वही देखते हैं, उसमें और कुछ नहीं है ना। तो ये बहुत ही जगत है, ये बहुत ही जगत का वास्तविक है। लेकिन ऐसा नहीं कि भक्त लोग सिर्फ निराशावादी है जैसे मायावादी या ज्ञानियों की तरह, भक्त लोग आशावादी है, भौतिक जीवन से वो निराशावादी है, भौतिक दृष्टिकोण से निराशावादी है, लेकिन हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आशावादी है। जैसे भौतिकवादी वैज्ञानिक लोग, उन्होंने अपने मुंह मोड़ दिया कि ये हम लोग कुछ हल नहीं कर सकते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हल नहीं कर सकते, लेकिन भक्त लोग क्या है, वो लोग आशावादी है ना, वो उसको हल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसके लिए औषधि ले रहे हैं। औषधा श्रोत्र मनोभिरामात, तो इस भव औषध को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के लिए औषध ले रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से वो आशावादी है। कभी कभी लोग ऐसे भी कहते हैं ना कि तुम लोग एस्केपिस्ट हो, बोलते कौन एस्केपिस्ट है, तुमने मुंह जो वास्तविकता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसको भूल के तुम कुछ और बना रहे, ये लॉलीपॉप बनाना है ना, टेलीविजन बनाना या ऐसे टेलीविजन बनाना, मोबाइल बनाना, कुछ ऐसे आईपॉड ईपॉड तो बनाते हैं, उसमें तुम असली समस्याओं को वास्तविकता को भूल गए, क्या करना चाहे। तो वैदिक सभ्यता मतलब पुनर्जन्म जया आया, पुनर्जन्म को जीतना ही वैदिक सभ्यता है ऐसे कहते शिल। तो ये ज्ञान का लक्षण है, इनको जानो लोग। आप इनके बारे में चर्चा करेंगे, ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के, लोग बोलेंगे बंद करो चुप रहो ऐसे अशुभ क्यों बोल रहे, वो अज्ञान, वो लोग सोचते हैं अज्ञान ही शुभ है करके सोचते हो। तो प्रभुपाद बोलते हैं जो दार्शनिक व्यक्ति है वो हमेशा मृत्यु को अपने अपने सामने रखता है, वो ही दार्शनिक व्यक्ति है। इसका अर्थ क्या है, मृत्यु के बारे में चिंतन करता है या कैसे उससे मुक्त हो जाए। और उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिरणविस्वंग पुत्र धारा ग्रहादिशु अनभिस्वंग पुत्र धारा ग्रहादिशु, ये भी एक ज्ञान का लक्षण है। पत्नी, धारा मतलब पत्नी, पुत्र मतलब बच्चे, ग्रह मतलब परिवार आदि सगे संबंधी, इनसे आसक्ति न होना एक ज्ञान का लक्षण है। या दूसरे शब्दों में इसमें गिर जाना ज्ञान का लक्षण नहीं है, वो अज्ञान का लक्षण है। हमें जानकारी मिलता है ना, ये बहुत बड़ा बंधन का कारण है, बहुत बड़ा क्या है, दुख का कारण बनता है, ये जानकर भी उसमें गिर जाना क्या है, वो और भी बड़ा मार्ग है। जो नहीं जान के गिरता है वो तो अज्ञान में है, वो तो हम जानते हैं, और जानकर भी गिर जाना वो बहुत ही बड़ा अज्ञान है। तो विशेष करके जो स्त्री संग है वो सबसे बड़ा बंधन और कारण का दुख का कारण बन जाता है। तो इसको सभी जो संतों ने खंडन निंदा किया है, इसको दे हैव खंडन्ड। चैतन्य भागवत में एक श्लोक आता है, क्या श्लोक आता है, वो बलराम जी को गुणगान करते हुए चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, बलराम जी के साथ, बलराम जी का जो गोपियों के साथ जो रासलीला है सभी संतों ने उसको गुणगान किया है, लेकिन बद जीव का स्त्री के साथ जो संबंध है या उसका संग है उसको सभी संतों ने खंडन निंदा किया है इसको। तो उस तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वत ठाकुर एक तात्पर्य में 150 श्लोक उल्लेख किया, कहाँ कहाँ संतों ने इसको खंडन किया है, सब जगह सभी वो इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बता दिया, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और उसमें आनंद और लेना चाहते हैं या उसको गहराई में समझना चाहते हैं या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उन सभी, ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक तो भागवत से है और कुछ अन्य शास्त्र से भी है, वो भागवत के श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़िए, उन श्लोकों के तात्पर्य पढ़िए और आपको ज्ञान और ज्ञान उदय हो जाएगा। आपको और ऐसे परिवार में बंध जाना है कि इच्छा है ना, या पुत्र धारा ग्रहादिशु के साथ आसक्ति है तो थोड़ा उसका आस्वादन कर सकते हैं। चैतन्य भागवत आदि कांड पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 29। आपको चाहे तो हम सब वो श्लोकों का प्रभुपाद जी के तात्पर्य से इकट्ठा किया है, आप चाहे तो आपसे हमसे मांग सकते हैं। हम सोच रहे थे ब्रह्मचारी उनको एक उसका सेमिनार या कोर्स कर देंगे ऐसे करके, इसको हाल ही में हम इकट्ठा कर चुके हैं। या वो सोच रहे थे मन में आया, लेकिन वो उसको बुकलेट किया तो कैसे बाहर हम लोग कर सकते, फिर भी लोग उसको क्या करेंगे, क्या होता है आजकल को सेंसार बोर्ड होते हैं ना, इस्कॉन सेंसार बोर्ड समझ गया क्या, सेंसार बोर्ड ऐसे कुछ कुछ क्या है, ऐसे काटते हैं वो सेंसार बोर्ड, मतलब ऐसे अश्लील चित्र को या ग्रंथों को वो अनुमति नहीं देते हैं, तो ऐसे सेंसार बोर्ड हमारे ऊपर प्रभाव करेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि अर्थ ये नहीं है कि स्त्री को हमें ये नहीं करना, ये करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, हेट करना चाहिए ऐसा, या असम्मान करना चाहिए उनको। इसका अर्थ है कि जो आसक्ति है वो, या आकर्षण जो है वो नहीं होना चाहिए, आसक्ति और आकर्षण जो है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बताया, नभिस्वंग पुत्र धारा ग्रह, एक व्यक्ति गृहस्थ में भी होए, क्योंकि पुत्र धारा ग्रह किसके किसके होते हैं, गृहस्थ का ही होते हैं, उसके लिए है ज्ञान। तो वो उसका ज्ञान का लक्षण क्या है, उससे आसक्त नहीं रहता, तो उसका अर्थ क्या है, आजीवन उनके साथ ही रहना, डूबे रहना उसी में, जीवन में ये लोग मेरा रक्षा करेंगे, मैं इनका रक्षा करूंगा, तो ऐसे कृपण भावना होना, उसको आसक्ति कहते हैं। तो वो ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, आप देखेंगे एक सभ्य व्यक्ति के जीवन में, जीवन के 3/4 भाग क्या है, पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन में केंद्रित रहता है, और सिर्फ बीच में थोड़ा इस नियमित इंद्र तृप्ति को अनुमति रहता है, गृहस्थ है ना, 4 आश्रमों में सिर्फ गृहस्थ आश्रम में क्या है, थोड़ा ऐसा नियमित इंद्र तृप्ति को अनुमति दिया। तो वर्णाश्रम का लक्ष्य ही यही था कि हमें ये देहात्म बुद्धि से मुक्त करना, या उसको नियमित करके उसके ऊपर उठाना, वही लक्ष्य है वर्णाश्रम का, वही आध्यात्मिक जीवन। तो जब वर्णाश्रम नहीं रहता है तो पूरा केंद्र बिंदु इंद्र तृप्ति हो जाता है, विशेष करके मैथुन सुख, उसमें लोग डूब जाएंगे। तो पुत्र धारा ग्रह दिशु, पत्नी मैथुन जीवन, पुत्र धारा वगैरह, पुत्र ग्रह दिशु वगैरह मैथुन का ही विस्तार है बस। हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, प्रभुपाद जी बम्बई में थे, एक बड़ा परिवार में गए, उनके वेल विशर अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ, वो व्यक्ति अपने परिवार को क्या कर रहे थे, प्रभुपाद जी से परिचय करा रहे थे। तो पहले अपने पत्नी को, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये बड़ा बेटे का पत्नी है, बड़ा बेटे के पुत्र है, बच्चे है, फिर उसे ये मेरा बीच के बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है, उसके पत्नी है, इसके बच्चे है, ये मेरा बेटी है, उसके बच्चे है, बेटी के दामाद है, ये सब है, ऐसे 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 उसको परिचय कराया। जब वो लोग सब अलग जगह पर थोड़ा दूर गए, रूपा जी बोले ये मेरा मैथुन जीवन, दिस इज माई सेक्स लाइफ। तो ऐसे होता है। तो ज्ञान का लक्षण है ऐसे आसक्त रहे, इसमें डूबे नहीं रहे, वो ज्ञान का लक्ष्य। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद अभी अभी ग्रस्त में है, उनको कैसे करना चाहिए, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये तो स्वाभाविक है, अपने परिवार वालों से स्नेह होना ये स्वाभाविक है, लेकिन उसको कैसे शुद्ध करना चाहिए, परिवार को, हमारे पारिवारिक जीवन को कृष्णमय बना के शुद्ध करना चाहिए। तो सभी परिवार वाले सुबह शाम आकर क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, उसका कीर्तन करना चाहिए, गीता भागवत से पढ़ना चाहिए, ऐसे कहते हैं। आजकल ये सब नहीं चलता, भक्तों के घर में भी टेलीविजन चलता है, कीर्तन और गीता भागवत का श्रवण कीर्तन नहीं होता है, टेलीविजन चलता है, टेलीविजन, या ये नहीं करेंगे तो टेलीविजन निश्चित ही चलेगा। इसलिए कम से कम हर रोज एक बार, तो यहाँ पर तो प्रभुपाद जी 2 बार बोले, कम से कम एक बार तो क्या करना चाहिए, तो ऐसे करना। यहाँ पर और दो चीज बता रहे, विग्रह का सेवा होना चाहिए। आरंभ में तो हम लोग विग्रह का या मंदिर के जो नजदीक होते हैं उनको तो हम लोग ये नहीं करते हैं, तो विशेष करके ऐसे आरती कुछ मंदिर में, मंदिर बनाना चाहिए घर में, तो आरती वगैरह करना चाहिए। और सब लोग सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, इधर उधर खाना नहीं चाहिए, बाहर के कुछ नहीं खाना चाहिए। अभी चिप्स खाना क्या आजकल बहुत सारे आता है ना, बिस्किट खाना, चॉकलेट खाना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण, ये चार चीज करना चाहिए, तब पारिवारिक जीवन कृष्णमय बन जाता है। तो कम से कम यहाँ पर तो प्रभुपाद जी ये चीज हमको एक दो बार बता करने के लिए बोल रहे, कम से कम एक बार तो करना चाहिए, तो नहीं तो वो कृष्णमय नहीं होगा, हम लोग ऐसे पारिवारिक जीवन से आसक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी यहाँ पर अंत में बहुत कड़क बोल रहे, देखो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है, कृष्ण की सेवा करना ही बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण भक्ति करना ही बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए जो कुछ भी करना चाहिए उसको करने के लिए तैयार होना चाहिए। अभी पारिवारिक जीवन उसके लिए योग्य नहीं है तो उसको तुरंत ही त्याग देना चाहिए, ऐसे बोलते। ये चार चीजों को, कम से कम चीजों को भी पालन नहीं कर पाते तो ऐसे पारिवारिक जीवन में रह के क्या फायदा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, अर्जुन को वन शुड सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू सर्व कृष्ण या रियलाइज कृष्ण, कृष्ण को भक्ति करने के लिए या कृष्ण को साक्षात्कार करने के लिए सब कुछ समर्पित करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, अर्जुन को क्या करना था, ये भगवान को सेवा करने के लिए, भक्ति करने के लिए उनके परिवार वालों को हत्या करना था, वो उनका स्थिति था, उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। अभी आपको कृष्ण भक्ति करने के लिए आपकी घर वालों को हत्या करना चाहिए, उसके लिए भी तैयार होना चाहिए। वैसे एक क्षत्रिय के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं। उस समय वो स्थिति था, ऐसा विशेष स्थिति था, वैसे सामान्य तो होता नहीं है, लेकिन उस समय वो विशेष स्थिति था, तो उसको गलत समझना नहीं चाहिए। आप लोग परिवार वालों को मार देता हूँ करके ऐसे नहीं मानना चाहिए आपको, है ना। तो लेकिन भाव क्या है इसके पीछे, हमारे जीवन में प्रमुख चीज है परिवार नहीं, हमारे जीवन में प्रमुख चीज है कृष्ण भक्ति। हालांकि वर्णाश्रम में परिवार को भी मान्यता दिया जाता है, लेकिन पारिवारिक आसक्ति उतना नहीं होना चाहिए। पाश्चात्य देश में ऐसे पारिवारिक कोई ऐसे कुछ परिवार नामक कुछ चीज ही नहीं है, और भारत में क्या होता है, परिवार रहता है लेकिन बहुत ज्यादा ही आसक्त रहता है, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रगति नहीं। परिवार में कोई ऐसे भक्त बनना चाहता है, भगवान को समर्पित करना चाहता है, भक्त लोगों के परिवार में भी उसको प्रोत्साहन नहीं देते, तो ये स्थिति है। तो इसलिए इस सबसे चीजों से अनासक्त रहना चाहिए। नित्यम च समचित्तत्वम, सुख दुख में क्या है, समभाव रहना। तो ये हम लोग इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं कि ये भौतिक जगत के लक्षण हैं, ये हमेशा आते रहेंगे। आप लोग भक्ति स्वीकार किया, जरूरी नहीं कि ये सब नहीं आएंगे। तो ये जब तक भौतिक जगत में रहेंगे, जब तक ये भौतिक शरीर रहेगा, ये सब आते रहेंगे, कोई ना कोई आपको तकलीफ देते रहेंगे आश्रम में भी। या कुछ ना कुछ चीज आपको तकलीफ देता रहेगा, मोबाइल को त्यागने तकलीफ हो सकता है, उसको त्यागने तकलीफ हो सकता है, लेकिन हमें उसको स्थिर नित्यम समचित्त से चित्त वाले होना चाहिए हम लोग। तो और उसके बाद में मई चानन्य योगे न भक्ति रव्य विचारिणी, भगवान को उसको ऐसी उस स्थिति को कभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम लोग ऐसे अव्य विचारिणी भक्ति करते हैं। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का क्या अर्थ बताते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास समर्पण आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन लक्षण क्रियेत भगवत अध्यात्मनेदादितुत्तमम यही शुद्ध भक्ति का परिभाषा है, लक्षण है ऐसे करना, उसको अव्यभिचारिणी भक्ति कहते हैं। और विविक्त देश सेवित्वम, हम कह रहे थे बहुत सारे इंद्रियार्थेषु वैराग्य, बहुत सारे ऐसे चीज है वैराग्य से संबंधित है। तो यहाँ पर भी देखे इंद्रिय विविक्त देश सेवित्वम, एक व्यक्ति को निर्जन स्थान में वास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार किया है तो भौतिकवादी वो व्यक्तियों के साथ वो मिल नहीं सकते हैं, मिल के जुल के नहीं रह सकते है ना। इट ग्रोज अगेनस्ट हिज ग्रेन बोलते हैं ना, दैट वुड गो अगेनस्ट हिज ग्रेन, तो उनकी स्वभाव के विरुद्ध हो जाता है, उनकी कार्यकलाप के विरुद्ध जाता है। हम लोग इसको चर्चा कर रहे थे। तो जब भौतिकवादी लोग उठ जाते हैं वो सो जाते हैं, और जब वो सो जाते हैं तो भौतिकवादी लोग उठ जाते हैं, दोनों तद विरुद्ध है ये। या इंद्र तृप्ति के कार्यकलाप और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति, ये दोनों तद विरुद्ध है। या भौतिकवादियों को भौतिकवादियों और आध्यात्मवादी दोनों ऐसे होते हैं, दोनों साथ में नहीं चलते। आजकल सब क्या है, साथ में चलने के लिए प्रयास चल रहा है, हम लोग दोनों साथ में चलेंगे दास में रहेंगे, तो ऐसे नहीं होता है। तो साथ में नहीं चलेंगे तो साथ में चलेंगे तो आप आध्यात्मवादी नहीं रहेंगे, तो आप भौतिकवादी विविक्त देश से। तो इसलिए तो निर्जन स्थान में वो वास्तव में जो आध्यात्मिक प्रगति करते हैं ऐसे संघ में रहने के लिए उनको एक क्षण भी नहीं होगा, वो उनको बहुत तकलीफ होगा, ही विल फील डिफिकल्टी। तो वास्तविक जो प्रगति करते हैं, या दूसरे शब्दों में ऐसे संग में रहने में तो कोई प्रगति होता ही नहीं। इसीलिए असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक कप्य साधो कृष्णा भक्त आर। तो पहला चीज क्या है, असत्संग त्याग। चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा गया था वैष्णव कौन है, जो असत्संग, उनका परिभाषा क्या था, असत्संग को जो त्यागता है वो वैष्णव। आजकल भी इस्कॉन के भक्त सभी लोग क्या है, तो हमेशा उनका सत्संग में रहते हो, ऐसे भौतिकवादियों के संसर्ग में रहते हैं। तो जब प्रभुपाद जी थे तब उनको अच्छा नहीं लगता था, प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे। एक बार ऐसे हो गया कि जब प्रभुपाद जी थे तो सभी गृहस्थ जो स्त्री पुरुष बच्चे सब लोग मंदिर में रहा करते थे। तो एक बार ऐसे हो गया कि जो गृहस्थ परिवारों को संभालना मुश्किल हो गया, तो लेकिन वो समस्या हो गया लीडरों में जो नेतृत्व कर रहे थे, वो लोग बहुत चर्चा करने लगे उसके बारे में। लेकिन प्रभुपाद जी ने निष्कर्ष दिया कि मुश्किल है उनको पालन करना, मेंटेन करना, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे शिष्य क्या है भौतिकवादियों के संग में आकर वो पतित हो जाए, खत्म हो जाए उनका, ऐसा नहीं चाहता हूँ। ऐसा प्रभुपाद जी कहे, उन्होंने खत लिखा अपने नेताओं को। तो आजकल हम लोग बहुत संतुष्ट है कि सब लोग क्या है मिल के जुल के रह रहे करके, तो ऐसा नहीं होता। तो जो आध्यात्मवादी होते हैं वो आध्यात्मिकवादी उनके संग में रहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है ना। सो विविक्त से विविक्त देश से विद्वान, तो हमें ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जो भौतिकवादियों से मिलके जुलके नहीं रहना चाहिए, वो ज्ञान का लक्षण नहीं है, उससे प्रगति नहीं होता है। तो हमें देखना चाहिए अरतिर जनसंसदी, तो जहाँ पर लोगों का इकट्ठा होता है ऐसे खेल कूदी, सिनेमा, मनोरंजन, सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक ऐसे कार्यकलाप होते हैं, वहाँ पर भक्त लोगों को कोई रुचि नहीं होता, या जो ज्ञान में स्थित है उसमें कुछ रुचि नहीं आता, ऐसे कहते हैं। और आध्यात्म ज्ञान अरतीर जन संसदी आध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तो आध्यात्म ज्ञान में स्थित होना। प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल बहुत सारे ऐसे संशोधक है और दार्शनिक है, वो लोग अपने मैथुन जीवन के ऊपर वो संशोधन करते हैं, उसके बारे में क्यों संशोधन करना चाहिए, कभी हो सकता है उसके लिए है ना, संस्कार वगैरह क्या कैसे करना चाहिए वो सब उसमें संस्कार हो सकता है, लेकिन जो तथाकथित भौतिकवादी समाज में इसके बारे में संशोधन करते हैं, जैसे सिगमंड फ्रॉयड, उसने क्या किया, वो उसको मनो क्या है मनोविज्ञान का पिताजी मानते हैं, उसको पिता मानते हैं, और उसका मनोविज्ञान क्या था, आप मैथुन सुख में नहीं लगेंगे तो आपको मानसिक समस्याएं हो जाएंगे, उसका वो तथाकथित क्या है धारणा था, इसके कारण वो बहुत प्रसिद्ध हो गए कि लोग अंधाधुन मैथुन में लगने लगे, तो प्रभावी दार्शनिक 21वीं सदी के, हालांकि वो 21वीं सदी में था, वो ऐसे था 21वीं सदी के प्रभावी दार्शनिक सिगमंड फ्रॉयड, कुछ लोग हुए बहुत प्रभावी हो गए, सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल मार्क्स, उसका जो कम्युनिज्म कम्युनिस्ट थ्योरी, और कौन सा डार्विन, तो ये जो लोग हैं बहुत प्रभावी, वो सबको कोई जानता नहीं, वो सिर्फ बॉलीवुड के बंदर बंदरिया जानते हैं बस, और कोई नहीं जानते। इंडियन वर्जन ऑफ सिगमंड फ्रॉयड, तो ऐसे उसने बताया, उसका मनोविज्ञान है, मनोअज्ञान बोल सकते हैं उसका, तो वास्तव में तद विरुद्ध होता है, जितना उसमें मंद तत्व में लगो उसमें मानसिक चिंता है, आजकल हो रहा है ना, इसके कारण कितने सारे मानसिक रोग, लोग आत्महत्या कर रहे हैं इतने सारे, क्योंकि अभी बंगलोर भारत में सबसे बड़ा आत्महत्या करने वाले स्थान है, कि लोग इतने ऐसे चीज़ों में लगे हुए हैं, है ना, इसके कारण तो ये लक्षण है। तो ये संशोधन का विषय नहीं, संशोधन अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, तो आत्मा के बारे में संशोधन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी MIT में गए और पता पूछे उनको कि कहाँ पर है ऐसे जो आत्मा के बारे में संशोधन करने का कोई विभाग है, ऐसे कहते हैं, तो उसमें संशोधन कर रहे। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, दर्शनम मतलब आत्म साक्षात्कार कहते हैं उसको, तो वो क्या है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, उसके लिए जो भक्ति मार्ग है वो बहुत ही व्यवहारिक है। तो जब भक्ति नहीं रहता है तो क्या हो जाता है, तो कोई तत्व का मतलब ही नहीं रहता, तत्व मतलब भागवत में वर्णन हुआ है, क्या वर्णन हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ऐसे वर्णन हुआ है, सॉरी ओम तत्त्व विदस्तत्व ये ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ऐसे कहते हैं। तो तत्व का परिभाषा क्या है, वो अद्वैय ज्ञान है, ऐसे जो तत्व को दर्शन करने वाले हैं वो उन्होंने बताया है, और उसको ब्रह्म परमात्मा और भगवान कहते हैं, अंत में सर्वोच्च वो क्या है, भगवान का स्वरूप है, भगवान है अंत में। तो जीवात्मा भगवान के भक्त है और भगवान है और उनके बीच में जो संबंध है वो भक्ति है, भक्ति व्यवहारिक है उसको प्राप्त करने के लिए, इस तत्व को दर्शन करने के लिए या समझने के लिए। तो इसका ऐसे हम लोग देखते हैं, श्रील प्रभुपाद अंत में यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञान कैसे होता है, एक सीढ़ी के समान है ये, तो जो ह्यूमिलिटी अमानितम ले अमानितम से लेकर तत्व ज्ञानात दर्शनम तक एक सीढ़ी है, ये भी एक सीढ़ी आप बना सकते हैं उसको। तो कोई आरंभिक स्तर पर है, कोई कोई दूसरे महल में है, तीसरे महल में है, ऐसे है। तो या अंत में श्रील प्रभुपाद इसको ऐसे वर्णन कर रहे थे, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। निष्कर्ष, विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भी विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहले सीढ़ी में है, कुछ दूसरी पर तो कुछ तीसरी पर, किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बारम बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करता है, करना चाहता है, तो उसका प्रयास विफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना यह ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। इसका अर्थ है जो मायावादी लोग है वो पहला सीढ़ी भी वो पहुंचे नहीं है, उससे नीचे है। यद्यपि सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा टुकराया जाता है, फिर भी वो अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर है ना। भूख प्यास, सुबह उठ के भागना पड़ता है, फिर भी सोचता है मैं ईश्वर हूँ, ऐसा है ना। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व यानी विनम्रता से होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वास होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? अरतीर जनसंसदी मतलब जनसमूह में उनको आनंद नहीं आता, वो उसमें भाग नहीं लेते। क्योंकि अभी आप गवर्नमेंट सिलेबस पहले कर रहे हो, तो वो लोगों का एक उसमें एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है कि खेल कूद में भी भाग लेना चाहिए बच्चे लोग, ऐसे तो यही होता है। क्यों प्रभुपाद जी ने बताया था ये गवर्नमेंट सिलेबस वगैरह फॉलो मत करो करके। आरंभ से ही हमारे पास वो सब है इकट्ठा किया प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को। आरंभ से 1972 से लेकर 1976 तक कितनी बार उन्होंने बोला हम ये जो गवर्नमेंट सिलेबस है उसको पालन नहीं करें, ये गवर्नमेंट के जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको हम लोग पालन, ये भगवद्गीता में अच्छा बताया गया प्रक्रिया, इसको हम पालन करते हैं। तो अभी सब मंडेर स्कूल बन गए अभी इस्कॉन, आजकल ऐसे होता है गुरुकुल का नाम दे रहे हैं इस्कॉन में और स्कूल चला था, गवर्नमेंट स्कूल चला था।
ये फुटबॉल में सब शारीरिक व्यायाम के लिए,
हाँ
जो शारीरिक व्यायाम के लिए ये भी खतरनाक हो सकता है।
शारीरिक व्यायाम के लिए कोई अच्छा है कि कुछ योगासन करे, वो सतुगुण में रहता है ना। हाँ कबड्डी रेसलिंग कर सकते हैं ना, रेसलिंग ब्रह्मचारी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ क्या हुआ? तो ऐसे सात्विक खुद से कर सकते हैं है ना। रेसलिंग बताया ना प्रभुपाद जी ने, मल्ल युद्ध वो अच्छा है। रसलिंग मतलब जो आधुनिक जमाने में जो रसलिंग होता है ऐसा मत समझो बाबा, वो पहले जमाने में बहुत अच्छा होता था, मिट्टी में वगैरह करते थे, आजकल का रसलिंग के समान वो, इसलिए आप लोग हंसने लगे क्या रसलिंग बोले तो, आजकल के नहीं जैसे टेलीविजन ही। कौन
वीडियो में मैंने देखा था गुरु का बच्चा भी कुश्ती खेलते
कुश्ती कुश्ती। हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। क्या है या सत्वगुण का अनुशीलन करना चाहिए और तपस्या करना चाहिए तब दृढ़ता प्राप्त होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो उपाय ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं आखिरी न के ना भागवत में बताया गया। हालांकि वो नारद मुनि थे, नारद मुनि परमहंस, लेकिन फिर भी आखिरी न के ज्यादा क्रीड़ा की जरूरत नहीं, ज्यादा क्रीड़ा गुरुकुल में क्रीड़ा भी करने का जरूरत नहीं। भगवत में ऐसे बताया क्रीड़ा में, नारद मुनि क्रीड़ा में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। प्रहलाद महाराज के बारे में भी बताया गया, ध्रुव महाराज। ठीक है, लेकिन वो लोग ब्रह्म मतलब क्या, उनका धारणा कि वही परम ब्रह्म है, अंत में वर्णन हुआ ना, एंड ऑफ द परपट सी, मैं ईश्वर हूँ ऐसे बोलते, आई एम गॉड, वो इसके कारण वो अहंकार में रहते हैं। तो कितना दुर्भाग्य है ना, वो लोग सोचते हैं कि बहुत पांडित्य अर्जित करते हैं लेकिन फिर भी पहला चीज भी पहला सीढ़ी में भी नहीं है मायावादी। एक्चुअली रामानंद संप्रदाय, रामानुजाचार्य जो शिव संप्रदाय का उत्तर भारत के एक नया वर्षन है वो, लेकिन वो पदभ्रष्ट हो गए और उनको और बहुत सारा मिश्रित किया वो लोग, अभी सब भ्रष्ट हो गए सब। वो भगवान कृष्ण को ईर्ष्या करते हैं, वो सिर्फ राम को क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे बहुत बहुत उनके अलग अलग, उनमें ही अलग अलग धारणाएं हैं, कुछ नहीं कुछ भी ये नहीं है।
तो योगा कराते हैं
अलग 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 सब मिश्रित किया वो लोग, वो हम लोग उनको स्वीकार, वो लोग बहुत उस इतिहास वो गौड़ीय संप्रदाय को क्या किया था, वो लोग चुनौती दिया था बहुत साल पहले, तीन सौ चार सौ साल पहले। ये रामायण जैसे रामानुज नहीं रामानंदी, हाँ उसका नॉर्थ इंडियन वर्जन है एक रामानंद करके, वो श्री वैष्णव से संबंधित था, वो उत्तर भारत में वो प्रचार किया उसने, लेकिन वो रामानुजाचार्य के जो शिक्षा है उससे भी वो प्रथम भ्रष्ट हो गया, तो इस समय में तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग राम के क्या थे उपासक थे, और वो लोग रामानंदी के बाद कुछ दो तीन जो गुरु हुए वो लोग उनका ज़्यादा प्रभाव था जयपुर राज्य में। लेकिन जयपुर के राजा जो जय सिंह वृंदावन आके वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित हो गए, उसके कारण उनको डर महसूस होने लगा कि ये लोग राजा तो गौड़ी वैष्णव तो नहीं बन जाएंगे और हमारा प्रभाव चला जाएगा। ऐसा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में बहुत गलती ढूंढा हुआ, मतलब गलती अपवाद किया, तो ये संप्रदाय ठीक नहीं है, इनके पास वेदांत के ऊपर कोई दया नहीं है। और क्या है या राधा रानी का पूजा करते हैं और ऐसे बहुत सारा कुछ बताया। वो बलदेव विद्याभूषण जाके उनको खंडन करते हैं, तभी बलदेव विद्याभूषण गौड़ीय भाष्य करके वेदांत के ऊपर भाष्य रचना करते हैं।
ये जो प्रक्रिया है सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ आप यहाँ भक्ति ही नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से साक्षात लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। जो इसका मेन गॉड है ऋषिकेश में, जो अभी वहाँ पर जिसने प्रचार शुरू किया है, जो हम लोग ऋषिकेश आए थे तो वो हमारा मार्च के नाम से इस तरफ हम लोग एक दिन मंदिर के अंदर भी बैठे कीर्तन के समय, वहाँ से ये संचालित।
बहुत सारे ऐसे हैं दुनिया या उनके विरुद्ध प्रचार करना चाहिए, उनको नाम लेके लेके प्रचार करना चाहिए।
वो फेमस क्यों हो गया, उसने ऐसे सीने में कुछ घास उगाया था, सब टेलीविजन ने नेपाल घर में सब दिखा दिया,
उससे क्या हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, मट्टी में इतना सारा घास उग रहा है, उसका क्या है, वो सब बताओ ना। ऐसे
उसके शिष्य को भी पता है घास तो जमीन में उगता है, तो तुम्हारा गुरु कौन सा बड़ा हो गया, तो बहुत उसे से गुरु के पास गया, फिर हम गुरु से मिले,
हाँ। तब भी जब वो अपना स्तन को गुणगान करते हैं तब भी उनको छोड़ना नहीं चाहिए तब भी छोड़ना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो लोग ऐसे ही बोल के क्या करेंगे, लोगों को गुनगुना करते रहे, छोड़ना नहीं चाहिए, जब तक वो मरते नहीं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है।
सुबह नाम के नाना है, शाम को भिक्षा देते हैं, ऐसे प्लस करेंगे तो वो काम नहीं लगता है शिष्य।
तो आप दक्ष करके उसको कांपना बंद कर दो, ठीक है। हरे कृष्ण।